चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बारीक लिखाई से इज्तिनाब और मुनासिब कलम इख्तियार करना। लिखने में बारीक लिखने से इज्तिनाब करें, क्यों? क्योंकि बाद में जब पढ़ेगा ना गलती करेगा, पहली बात है बारीक होगा। फिर दूसरी बात है, एक और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताऊंगी कि जब हम नोट्स लेते हैं ना उस वक्त हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हम सीख रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर अल्लाह ताला बंदे से राज़ी रहे तो बंदा उन नोट्स की मदद से फिर आगे पढ़ाता भी है या दूसरों की मदद करता है उसमें। अब जब आपने बहुत बारीक लिखा होता है ना तो आप उसको बार बार जाके झुक झुक के देखते हैं, फिर गलतियां करते हैं। अब जब आप किसी को सामने बिठा के पढ़ा रहे हैं और आप अपने नोट्स को बार बार देख रहे हैं करीब से या बिल्कुल रीडिंग स्टाइल कर रहे हैं, तो उससे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने वाले को, आई कॉन्टेक्ट नहीं होता। जब लिखें तो बहुत बड़ा बड़ा खुल, बड़ा बड़े से ये नहीं मुराद क्या वो पूरे पेज पे एक ही लफ्ज़ हो, यानी पूरी लाइन की बजाय अगर थोड़ी सी बात है तो मिडल में लिख दे जो इम्पॉर्टेंट है। कुछ जुमले होते हैं उसको बीच में लिखना होता है, कुछ को साइड पे, किसी को एक रंग से, किसी को दूसरे से, लेकिन राइटिंग खुली होनी चाहिए। इसलिए कि ख़त अलामत है, इसको खूब वाज़े करके लिखना चाहिए। अलामत मीन यानी निशानी होती है, या इसको देख के फिर इंसान बाद में पढ़ता है। बाज़ बुज़ुर्ग बारीक ख़त देख कर फरमाते थे, हाज़ ख़त तुम मल ला युक़िनु बिलखल्फ़ी मिन अल्लाह ताला, कि ये वो ख़त है कि जिसका यकीन नहीं कि बिलखल्फ मिन अल्लाह ताला। थोड़ा सा इसको मुझे डबल चेक करना था, मुझे मौका नहीं मिल सका, हालांकि ये मेरे पास थी। इसके माने में किसी बुज़ुर्ग का फरमान है, ऐसे लिखो जो ज़रूरत के वक्त तुझे काम दे और ऐसा न लिखो जो हाजत के वक्त कोई काम ना दे। ज़रूरत के वक्त से मुराद बुढ़ापा है, जिसमें आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। यानी इतना बारीक ना लिखो कि उसके बाद फिर तुम्हें खुद ही पढ़ना मुश्किल हो जब तुम बूढ़े हो जाओ। यानी देखिए कि तालिब इल्म जो है वो दूरंदेश भी होता है ना, कल मैं अपने नोट से कैसे फ़ायदा उठा सकती हूँ, इसको सामने रखते हुए आज ही अच्छे नोट्स लें। बस उलमा फरमाते हैं, कलम इतना सख्त ना हो जो सुरत रवानगी से माने हो, यानी स्विफ्ट ना हो, आप नरमी से लिख ना सकें, और ना इतना नरम हो कि स्याही जल्द खुश्क हो जाए। अब देखिए कि ये बहुत अहम है, पेन का इस्तेमाल करना, और अच्छा पेन बंदे के लिखने में मदद देता है। अच्छा पेन नहीं होता ना, आपका नोट्स लेने को दिल नहीं चाहता। आप आजमा लें, ख़ास तौर पे तफसीर की क्लास में जिसमें नोट्स आप लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक एक लफ्ज़ लिखते हैं, कुछ बस जुमला कोई पसंद आया तो लिख लिया, उनका उनको जो जुमला अच्छा लगता है वो लिखते हैं। कुछ होते हैं वो पूरा लिखना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि हम पीछे रह जाते हैं। आप अपना पेन बदल के देखें, और मैंने आपको शायद पहले भी रिकमेंड किया था कि वो पेन होते हैं जिस जेली की तरह होते हैं, होते देखने में बॉल पॉइंट हैं लेकिन लिखने में पेन की तरह होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप $3 समथिंग का एक पैक आता है जिसमें चार पेन होते हैं, तीन चार रंग होते हैं उसमें, ब्लैक ब्लू व्हाटएवर, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड लिखने की बदल जाएगी। मैं तो जब भी कहीं नोट्स लूँ मैं कभी भी ख़राब पेन से ले नहीं सकती, क्योंकि जब हम बॉल पॉइंट लेते हैं ना यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही गंदी लिखाई आती है, वो अच्छी नहीं रहती। अगर बिल्कुल दूसरे सख्त पेन से यूज़ करेंगे तो आप देखिए कि वो फिर सफ़ा भी फाड़ता है, ना बहुत नरम हो के फैलने लगे इंक, और ना बहुत खुश्क हो के फिर लिखने में मुश्किल हो। फिर अगली बात है, नकले किताब के बाद असल के साथ मिलाने और नुक्तों को दुरुस्त करने के आदाब। असल के साथ तकाबुल करके या उस्ताद को सुनाकर मुश्किल मुकामात पर एराब लगाए और नुक्तों को दुरुस्त करे, तसहीह शुदा मुकामात को दोबारा देखे। यानी नकल किताब क्या होता है कि आपने कॉपी किया, पहले दौर में लोग हाथ से लिखते थे ना, किताबों में से कुछ नोट करना होता था, फोटोकॉपीज नहीं थी, और अमूमन किताबें जिसकी यहाँ ये बात करें वो अरबी ज़ुबान में थी जिन पर अराब नहीं लगे होते, जैसे ये आप लोगों की ये कोटेशंस है। तो आप जब एक दफ़ा लिख लें तो फिर उसको ओरिजिनल कॉपी से चेक करें, और कोई अगर अराब रुक गया या नुक्ता गलत जगह लगा तो उसको ठीक जगह लगाएंगे। मतन की मतन क्या होता है, ये टेक्स्ट, मतन की बाज़ इबारत को अगर हाशिए में जब्त करने की ज़रूरत हो और इसकी तशरीह करें, मतन के किसी नाम या ज़रूरी इबारत की ज़रूरत हो तो इस तरह लिखें। मसलन लफ्ज़ खरीज है, इसकी इबारत यू लिख दे, हा मुहम्मिला, आप तो परेशान हो जाएंगे, हा मुहम्मिला के रा इसके बाद या, यानी अरबी लफ्ज़ों की, आपको पता है कि बस ऐसी किताबें कि एक एक लफ्ज़ का नाम होता है, अलग होता है, और बस तफसीरें सिर्फ़ इस चीज़ पे आपको मिलती हैं कि एक एक लफ्ज़ की ग्रामेटिकल एनालिसिस होती है। कई दफ़ा मेरा बहुत दिल चाहता है कि आपकी तफसीर की क्लास में कुछ बताऊँ, लेकिन फिर मैं आप पे रहम आ जाता है और मैं छोड़ देती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप उसको लेते लेते असल मैसेज को ही जहन से निकाल दें। लेकिन यह है कि ये भी एक इल्म है और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि एक एक लफ्ज़ कैसे महफूज होता है। आम किताब में हरूफ़ मुअज्जमा के ज़ब्त करने के लिए नुक्ते लगाए और हरूफ़ मुहम्मिला के अदम नुक्ते की अलामत हलाल की सूरत वगैरह में लिखने की आदत रहे। ये बात आपको नहीं समझ आएगी, इसको आप छोड़ दें। तस्ही के बाद किसी कलमे की सेहत में शक का इख्तमाल हो तो शक को दूर करने के लिए इसके ऊपर लफ्ज़ हा छोटा करके लिख दें, यानी जहाँ कोई शक है कि ये ठीक है नहीं, एक छोटा सा कोई साइन आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं, टू बी चेक, TBC लिख सकते हैं। और अगर वो सिर्फ असल किताब में गलत हो तो मतन में ऐसा ही लिख दे, मगर इसके ऊपर छोटा सा लफ्ज़ कज़ा लिखकर हाशिए में इसकी सही इबारत लिख दे। अगर किसी किताब में कुछ कलमात ज़्यादा मस्कूर हों तो नकल में इनको तर्क ना करे, बल्कि लिखने के बाद इसके ऊपर ला लिख दे। अगर एक कलमा हो और अगर एक से ज़्यादा हो, एक सतर या इससे भी ज़्यादा हो, तो लिखने के बाद ऊपर बारीक ख़त लिखे या छोटे छोटे नुक्ते आखिर तक लिख दे और शुरू में मिन आखिर में इला लिख दे। तो मतलब यह है कि मिन से लेकर इला तक जायद है। अगर ख़ुद कातिब से कोई लफ्ज़ गलती से मुकर्रर कहते हैं दो बार मुकर्रर लिखा जाए तो इसके ऊपर निशान लगा दे, बल्कि दूसरे कलमे पर जायद का निशान लिख दे। ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं, इसलिए कि पहले जो किताबें भी होती थी ना वो हाथों से लिखी होती थी, तो हाथ से लिखने में कहीं ना कहीं एरर आ जाते थे। और अब तो आपको पता है कि जो बुक्स छपती हैं उसको पहले से ही वो पढ़ लेते हैं और डबल चेक करते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों के लिए इंशाल्लाह आपको कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे आप अपने लिए अमल ले सकते हैं कि कहीं कोई एरर देखें, कोई किताब में ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ आई या कुछ उसमें लगा कि डाउट है, तो उसको चेक करने के लिए आप निशानी रख सकते हैं। आठवां पॉइंट है तखरीज या इजाफा करने के आदाब। तखरीज किसको कहते हैं? एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ से कुछ लेना। तखरीज होता है निकालना और इजाफा होता है उसका ऑपोजिट, कुछ ऐड करना, यानी कुछ निकालना या उसमें डालना। तखरीज हाशिए में कुछ तखरीज का इरादा हो तो जिस इबारत पर हाशिया चढ़ाना हो, अब ये हाशिया चढ़ाना कोई गिलाफ चढ़ाने वाली चीज़ नहीं होती, लिखने को कहते हैं। मसलन जैसे एक हदीस है ना, इन्नमला मालु बिन्नियात, वो हदीस है, लेकिन कोई उसमें ऐड करना चाहता है बात कुछ उसमें, तो वो फिर हाशिए में लिखी जाती है और बॉर्डर में जो खाली जगह होती है उसमें, इसके ऊपर नंबर या निशान डालकर हाशिए में वही नंबर या निशान लगाकर तखरीज करें। जैसे आप लोगों की तफसीरों में भी होता है, अगर आपके वसासनुल बयान हो तो आप देखेंगे कि कुरान पाक की आयतें होती हैं ऊपर, फिर उसके बाद उसका तर्जमा होता है। तर्जमे में जिस पॉइंट को उन्होंने थोड़ा एलेबोरेट करना होता है ना, वाज़े करना होता है, तो उसको वो नंबर वन डालते हैं। ऐसे छोटी सी मुड़ा हुआ एक काफ की तरह की चीज़ होती है, वन डालते हैं, फिर नीचे वही काफ वन डाल के तो उसकी तफसीर लिखते हैं। यही अंदाज है जहाँ जो ये बता रहे हैं। दाईं तरफ यानी राइट साइड हाशिया लिखना बेहतर है। पहला हाशिया सबसे ऊपर लिखना शुरू करें ताकि बाद की इबारत के लिए जगह रह जाए। अगर इसकी ज़रूरत हो हाशिए की इबारत को मतन के साथ ना मिलाए, हाशिए के आखिर में स्वात खा का लफ्ज़ लिख दे। बाज़ मुसन्निफ़ीन की आदत है कि वो मतन की इबारत का इब्तदाई लफ्ज़ जिस पर हाशिया लिखना हो लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है जिस पर ज़रूरत होगी। हाँ, अब ये देखते हैं कि किसी किताब पर जायद हवाशी चढ़ाने के आदाब। यानी आपने कोई बुक ली, आप बुक पढ़ रहे थे, देख रहे थे, आपको दिल चाह रहा है कुछ और लिखे। जैसे याद है आपको शुरू में यही बुक शुरू कराई थी तो आपको कुछ कहा गया था ना कि इस बुक को पढ़ने का तरीका क्या होगा, कि आप मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं ना इस बुक को। लेकिन जहाँ कोई एक्स्ट्रा बात बताऊँ तो वो आप इन्फो पेपर या जैसे स्टिकी नोट्स होते हैं उस पर लिख के चिपकाएं। होपफुली आप लोग ऐसे ही करते होंगे। अब उस दौर में स्टिकी नोट्स तो नहीं थे जब ये किताबें लिखी गईं, तो अब अगर बाज़ लोग किताब के ऊपर ही डायरेक्ट लिखना चाहें तो वो क्या होगा, अब इसकी बात हम देखेंगे। और आप देख रहे हैं कि इससे आपको कितनी ही चीज़ें सीखने को मिल रही हैं ना। अपनी ज़ाती किताब के हाशिए पर नोट्स लिखने में कोई हरज नहीं, अलबत्ता किताब के असल हाशिए से गुटमुट ना होने पाए। बस अगर आप देखें कि आपकी जो किताब है और उसके बीच में साइडों पे पहले ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, हाशिया जो होता है वो जो साइड्स होती है ना, जो बॉर्डर कह लें आप हाशिए को, अब देखिए कुछ लिखा है लेकिन आपको उस्ताद कुछ और भी बताते हैं, तो अब आप कहते हैं कि सारा कुछ एक ही जगह हो जाए, तो वहाँ आप किसी दूसरे रंग के पेन से लिख सकते हैं। जैसे आप अमूमन देखिए कि राइटिंग ब्लैक होती है ना बुक्स की, तो फिर आप ब्लू कलर से लिखें। ऐसा नहीं लिखें कि आपका अपना भी ब्लैक है और उनका भी ब्लैक है, तो वो असल हाशिए ही गड़बड़ हो जाए कि ये हुआ क्या था। आखिर में स्वाद हा वगैरह ना लिखें। बास लोग लफ्ज़ हाशिया लिख कर बास फ़ायदा लिख कर हाशिया लिखते हैं जी। बास बुक्स में आप देखेंगे ना तो फ़वाद भी लिखे होंगे, फ़ायदा। बास लोग सोचते हैं ये कौन से फ़ायदे लिखे हुए, लेकिन फ़ायदा का मतलब ये होता है कि ये जो राइटर है ये अपनी तरफ से अब इसमें कुछ ऐड कर रहा है, ठीक है। मसलन बाज़ दफ़ा पुरानी किताबों को कोई पेश करता है, तफसीर इब्ने कसीर है, अब उसको कोई उर्दू में कॉपी करता है, अब उसके उसका हक क्या होता है कि उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ करे, लेकिन लिखने वाला किसी चीज़ की सलाह करना चाहता है या उसमें सेकंड ओपिनियन देना चाहता है या कोई बात ऐसी है कि जो उसको लगता है कि थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए, तो फिर उसका तरीका क्या होता है कि वो उसमें फ़वाद का लफ्ज़ लिख देता है, ये फ़ायदा है, और उसके नीचे वो बात फिर उसकी अपनी होती है। और ये अक्सर किताबों में नीचे बारीक राइटिंग में लिखा होता है। इंतहाई ज़रूरी याददाश्त हो तो लिख दे, वो भी अगर किताब की इबारत के मुतल्लिक हो, मसलन इबारत पर इश्काल की तरफ इशारा हो या कोई रम्स हो, रम्स इशारे को कहते हैं। आम बातें ना लिखे और इतना ज़्यादा हवाशी भी ना चढ़ाए जिससे किताब मद्दम हो जाए, यानी असल पढ़नी मुश्किल हो जाए। और यकीन करें बास लोगों का ये मसला होता है, अपने इतने नोट्स लिख लेते हैं बारीक बारीक कि वो बाद में उसी के ऊपर ही फिर पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, अपना लिखा हुआ भी नहीं पढ़ा जाता। बैनल सतूर लिखना मुनासिब नहीं, बैनल सतूर के ये देखे जैसे ये आपकी किताब है ना, इसमें एक सतर है ना जो ऊपर देखे ज़्यादा हवाशी से शुरू हो रही है और उसे नीचे वाली लाइन नहीं है बास इससे शुरू हो रही है, अब कोई के मैं इसके बीच में लिख दूँ, ये नहीं लिखना चाहिए, ये बहुत ही आपकी असल किताब को अजीबोगरीब चीज़ बना देगा, एक खिचड़ी पक जाएगी। बैनुल सतूर लिखना मुनासिब नहीं, बाज़ हज़रात सुर्ख रोशनाई से बैनुल सतूर लिखते हैं मगर ना लिखना ही बेहतर है, यानी अगर किसी मजबूरी में लिखना पड़े तो कलर चेंज करें। जैसे आपको लफ्ज़ी तर्जमे के पारों में लिखवाया जाता है ना, तो उसमें नीचे जगह बनी होती है वहाँ तो आप लिखेंगे, लेकिन लिखी हुई ऑर्डनरी जो बुक्स हैं उनके पीछे फिर ना लिखें, ठीक है। चलिए दो पॉइंट्स रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये चैप्टर पूरा होगा। किताब के अबवाब फसलों को आम खत से मुमताज़ करना, ये क्या है हेडिंग्स, जैसे यही चीज़ जो मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ ये हेडिंग है ना, आप देख रहे हैं कि बाकी लिखे हुए से ये मोटा लिखा हुआ है, यही वो कह रहे हैं कि किताब का बाब या बाब अबवाब क्या है, यानी चैप्टर का नाम या कोई फसल, फसल उसकी आगे सब कैटेगरी होती है, तो इसको थोड़ा सा मोटा लिखना चाहिए या कलर बदल दें। अबवाब फसलों और दीगर उनवानात को सुर्ख रोशनाई से मुमताज़ करने में कोई हरज नहीं, इस तरह नामों या मजाहब और ख़ास अकवाल को आम खत से मुमताज़ करना भी बेहतर है। जब ऐसा करें तो किताब के शुरू में इन रमूज की तरफ निशानदेही करें ताकि इसको गहराई के साथ मुतालिया करने वाले को समझने में आसानी हो जाए। अगर सुर्ख स्याही से इम्तियाज़ ना हो सके तो फ़ॉन्ट को मोटा करके भी इम्तियाज़ किया जा सकता है, यानी जो पेन है लिखने का फाउंटिंग पेन कहते थे ना उसको, तो उसको थोड़ा मोटा करें, या आज के दौर में जैसे मार्कर यूज़ कर सकते हैं आप। दो कलामों के दरमियान दायरा या कौमे से जुदा करना बेहतर है, एक ही तर्ज पर तमाम कलाम को मिलाकर लिखना अच्छा नहीं, इससे पढ़ने वाले के लिए दुश्वारी होती है जिससे वक्त ज़ाया होने का ख़तरा होता है, और इस अंदाज से लिखना इंतहाई गबी शख्स का ही काम है। यानी बाज़ को पहले कोने से शुरू करते हैं किताब के ऊपर बिल्कुल लेफ्ट जो राइट पे कॉर्नर है, और एंड तक राइट के लास्ट कॉर्नर तक एक ही स्ट्रेच में लिखते हैं, ना वो पैराग्राफ स्टाइल में लिखते हैं ना किसी चीज़ को मोटा करते हैं, लिखते ही जाते हैं। देखने में ये लगता है कि बहुत लिखा है लेकिन इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। आपको अपने लिखे से भी फ़ायदा उठाना है तो आपको मोटी बातें अलग लिखनी होंगी, पॉइंट्स दें, नंबरिंग करें। अभी इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आपके नोट्स लेने का स्टाइल थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी टिप्स पढ़ ली। आखिरी टॉपिक है मिटाने के आदाब, कुछ गलत हो गया आप स्क्रैच करना है मिटाना है तो क्या करें। उलमा ने कहा कि खुरच कर मिटाने से स्याही से मिटाना बेहतर है, खसूसन कुतुब हदीस में खुरच कर मिटाने में तोहमत और जहालत का इम्कान ज़्यादा होता है और वर्क के ख़राब होने का ख़तरा भी है। यानी कुछ लिखा था और आपको मिटाना पड़ा। खुरचना क्या होता है कि इस तरह उसको स्क्रब कर दिया जाए कि बिल्कुल वो लगे ना कि असल किधर था, लेकिन जब स्याही ऊपर लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कुछ था और वो मिटा। ये जो तोहमत और जहालत का इम्कान ज़्यादा है, इससे क्या पता चलता है कि यानी कोई असल लफ्ज़ों को मिटा के ख़ुद लिख देता है तो पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह के नबी के लफ्ज़ क्या थे और दूसरे कौन से थे, या आपने तब्दीली की है। और जहालत का इम्कान भी इस तरह ज़्यादा हो जाता है कि फिर असल इल्म और जो आपने कुछ उसमें एडिशन किया उसमें फ़र्क नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप ही की बात गलत हो, आप ही ठीक ना समझे हों, तो फिर उस सूरत में बेहतर है कि ऐसी चीज़ों में उसको वाइप आउट करें, वाइटो फेर दें। आज के दौर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद फिर आप अलग से उसकी इसलाह कर दें। अगर नुक्ता या आराप मिटाना हो तो खुरच कर मिटाना बेहतर है। क्यों? अब सोचिए, एक लफ्ज़ से नुक्ता मिटाना है, मसलन जैसे यही लफ्ज़ है, अब ये नुक्ता जो है इसके ऊपर से अगर आपने काफ़ का एक नुक्ता मिटाना है, अब आप देखिए इसको काले पेन से मिटाएंगे वो तो एक और बन जाएगा, वो तो ज़बर डल जाएगी, यानी एक इश्काल और एक शुबा पैदा होगा ना। तो इससे बेहतर है कि आप उसको फिर खुरच दें जो ज़्यादा चीज़ है। उस्ताद से या असल किताब से तकाबुल करके तस्खी करने के बाद इस मुकाम पर अलामत के तौर पर अबलगा या बलगतू या बलगल अरद या कोई और लफ्ज़ लिख दे। यानी कोई ऐसी चीज़ है, अगर कुछ सही करवाना हो तो अबलगतू का मतलब क्या होता है कि मैं पहुंच गया, या अबलगा पहुंच गया मुझको ये, यानी जो अरज थी जो बात थी उसको मैंने पा लिया। बात का ख़ुलासा क्या है कि जब भी नोट्स लिए जाएं उस सिलसिले में इंसान बहुत ही मुख्तात अंदाज से और बहुत अच्छे ले, ये सोच के ले कि मुझे बाद में इससे फ़ायदा भी उठाना है, और अल्लाह ताला फिर तौफीक दे हम सबको कि हम बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल किताब करीब है इख्तिताम के, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पढ़े में बरकत दे और हमें इनसे अमली ज़िंदगी में फ़ायदा उठाने वाला बना दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।